हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञान तिम्रंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्रादरः न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारा यण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविन्दं तामो धरमाधवेति। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरम्। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंद दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र का संकट। अत्यंत ही सुंदर लीला भगवान की जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो अभिषुक्तदेव गोस्वामी उस साइट का वर्णन कर रहे हैं जहां पर ये लीला हुई। उसके विषय में हमने पढ़ा कि त्रिकूट पर्वत जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही 80,000 योजन लंबा और चौड़ा है, उसमें अत्यंत ही सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और वहां पर एक सुंदर बहुत ही प्यारा उद्यान है जो कि वरुण देव जो जिस उद्यान को संभालते हैं और उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी वहां पर रहते हैं और बहुत ही देवताओं अप्सराओं गंधर्वों की स्त्रियां वहां पर आती हैं, देवताओं की स्त्रियां स्नान करती हैं। वहां पर एक झील भी है, बहुत सुंदर सरोवर है, रत्नों से ढके रहते हैं और बहुत ही सुंदर हम इस पर्वत का वर्णन श्रवण किया। उसके बाद उस ऋतुमान जो उद्यान है उसके अंदर कौन कौन से फल हैं, जो फलों के विषय में हमने कल पढ़ा, और आज जिस सरोवर में घटना हुई है, यानी जिस सरोवर में गजेंद्र ने ग्राह को पकड़ा है, सॉरी गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा है, उसका वर्णन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर रीति से। शुकदेव गोस्वामी एक एक वस्तु को इतना अच्छे तरीके से हमें बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान की लीला होने वाली है, तो वहाँ की हर एक वस्तु, हर एक पंछी पक्षी वृक्ष लता तट, यहाँ तक कि वहाँ की जो रेत है ना, वो सब धन्य है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर उनको आने का अवसर प्राप्त हुआ है जहाँ साक्षात भगवान आने वाले हैं। तो हर एक वस्तु प्रशंसनीय है, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर रीति से, बहुत ही उत्साह के साथ एक एक वस्तु के विषय में, एक एक पक्षी पंछी और किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे कैसे फल हैं, कैसे कैसे वृक्ष हैं, कौन कौन से यहाँ पर पशु आते हैं, क्या सब कुछ बहुत ही सुंदर से रीति से बता रहे हैं, क्योंकि ये सब भगवान की लीला में सहयोग देने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर रीति से वे कहते हैं, आठ स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 15। कुमुदुत पलक हलार शतपत्र श्रीयोर्जितम् मत्त षट्पदने गुष्टम् शकुन्तैश्च कलस्वनै कुमुदोत्पलकहलार शतपत्र श्रीयोर्जितम् मत्त षट्पदने गुष्टम् शकुन्तैश्च कलस्वनै। ये सब कमल की विभिन्न जातियां, जैसे हमने कल पढ़ा ना कि वो जो सरोवर है उसके अंदर तस्मिन् सरहसु विप्लम लसत कांचन पंकजम, कि वहां उस वन में एक बहुत ही सुविप्लम बहुत ही विशाल एक सरोवर है, वहां पर क्या है लसत कांचन पंकजम, कांचन पंकज है यानी कि सुनहरी रंग के पंकज हैं, और ये सब पंकज जो मतलब जो कंवर है उनकी विभिन्न जातियां यहाँ पर बता रही हैं। कुमुदोत्पल कहलार नाम गिना रहे हैं कुमुद पुष्प का, उत्पल यानी उत्पल फूल का, कहलार है एक फूल का नाम, शतपत्र तथा शतपत्र फूल, श्रेया यानी सौंदर्य सहित बहुत ही सुंदर, श्रीयोर्जितम बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ ये कमल के फूल हैं, मत्त और जब इतनी सुगंध इसमें से आती है, इतनी सुंदर सुंदर फूल हैं, तो जब पक्षी वहां पर आते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से मधुर चहचहाट करते हैं, और जो भंवरे हैं वो ऐसा लगता है उनको नशा छाने लगता है। मत्त षटपद जो भंवरे हैं वो नशे में मत्त हो जाते हैं, निर्गुष्टम गुनगुनाने लगते हैं, भिन भिनाने लगते हैं, शकुंतय यानी पक्षियों की चहचहाट से, कलस्वनय का मतलब होता है बहुत ही मीठा मीठा जो गाते हैं, उससे पूरे वन का वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है। आगे कहते हैं, हंस कारण्ड वाकीर्णम् चक्राहवर सारसैरपि जलकुक्कुट कोयष्टि दात्युः कुलकूजितम्। हंस कारण्ड वाकीर्णम् चक्राह वै सारसैरपि జలకుకుటకోయస్త్రీ దాత్యూహ కలకూజితం. అబ్ ఉస్ జో సరోవర్ హై ఉస్మే కౌన్ కౌన్ సే పక్షి హై, పక్షియో కే నామ్ గినా రహే హై. హంస హై, కారండవ వో ఏక్ ప్రకార్ కీ బత్తక్ హోతీ హై, ఔర్ ఆకిరణం యానీ కీ ఏక్ దో నహీ హై, జుండ్ హై, బహుత్ సారే హై. చక్రహవే యానీ చక్రో కే సాథ్ హై, బహుత్ సారే. ఔర్ సారస్ హై, జిన్కీ లంబీ సీ హోతీ నా గర్దన్, ఉన్కో బోల్తే సారస్. అపి భీ జల కుకుట, జల్ ముర్గా భీ, ఇఫ్ వో భీ బత్తక్ కీ టైప్ కీ హోతీ హై. కోయిష్టి కోయల్, కోయిష్టి హై. ఔర్ ద్యాత్యూహ, ద్యాత్యూహ భీ ఏక్ నా పక్షి కా నామ్ హై. కుల వో భీ జుండ్ హై, బహుత్ సారే హై. కూజితం, కుల కూజితం మతలబ్ కూంజ్ కర్తే హై, బహుత్ జ్యాదా మధుర్ మధుర్ ఆవాజే నికాల్తే. ఇన్ సబ్ కీ ద్వారా వో జో సరోవర్ హై బహుత్ జ్యాదా శోభాయమాన్ లగ్తా హై. అబ్ ఉస్ సరోవర్ కీ జల్ కే అందర్ జో పక్షి హై, మతలబ్ సరోవర్ కీ జల్ కా వర్ణన్ కర్ రహే హై, బహుత్ హీ సుందర్ తరీకే సే వే కహతే హై. మత్స్య కచ్చప సంచార చలత్ పద్మ రజః పయః కదంబవీత సనాల నీపవంజుల కైవృతం. మత్స్య కచ్చప సంచార చలత్ పద్మ రజః పయః కదంబవీత సనాల నీపవంజుల కైర్వృతం. మత్స్య కచ్చప్ అర్థాత్ ఉస్కే అందర్ బహుత్ బడే బడే సరోవర్ కే అందర్ బహుత్ బడే బడే మత్స్య హై, మతలబ్ మచ్లియా హై. కచ్చప్ బహుత్ బడే బడే కచ్వే హై. సంచార మతలబ్ సంచార మతలబ్ వో చల్తే హై బహుత్ జోర్ జోర్ సే. జబ్ స్విమింగ్ కర్తే హై పానీ కే అందర్ తో క్యా హోతా హై, చలత్ చలత్ మతలబ్ వో జో పద్మ హై నా జో పానీ కే ఊపర్, చలత్ పద్మ రజ పయా, జో పద్మ హై ఉన్కే ఉన్కీ రజ యానీ కీ ఉన్కీ పత్తియాం కభీ కభీ నీచే గిర్తీ హై, క్యూంకీ బహుత్ తేజ్ తేజ్ వాయు చల్ రహీ హోతీ హై, యా ఫిర్ బహుత్ తేజ్ తేజ్ పానీ మే యే మచ్లియాం ఔర్ కచ్చప్ ఇత్యాది బహుత్ తేజ్ తేజ్ తోడ్తే హై. తో క్యా హోతా హై కీ పద్మోం కీ ఉన్ కమలోం కీ కీ పత్తియాం కభీ కభీ పానీ కే అందర్ ఝడ్తీ హై, ఐసా లగ్ రహా హోతా హై వో పానీ పూరా గోల్డన్ లగ్ రహా హోతా హై. ఏక్ తో ఇత్నా సుందర్ జల్ థా, ఉస్కే అందర్ బహుత్ హీ సుందర్ సుగంధ థీ దేవతాఓ కీ, స్త్రీయో కే నహానే సే, ఔర్ అబ్ ఉస్కే అందర్ కమల్ కీ పత్తియాం ఔర్ కమల్ బిఖరే హువే హై. తో కిత్నా సుందర్తా సే యహాన్ శుక్దేవ్ గోస్వామీ ఉస్ సరోవర్ కా వర్ణన్ కర్ రహే హై, జహాన్ పర్ అభీ భగవాన్ ఆనే వాలే హై. ఆగే భీ కహతే కిత్నీ ఉత్సుక్తా హై వాపిస్ సే. శుక్దేవ్ గోస్వామీ యహాన్ పర్ బతా రహే హై కీ వహాన్ పర్ తట్ పర్ కిత్నే సుందర్ సుందర్ వృక్ష హై. కదంబ మతలబ్ వహాన్ పర్ కదమ్ కీ వృక్ష హై, వేతస్ యానీ బేంత్ కీ వృక్ష హై, నల్ల నర్కట్ హై, నీప్ హై, వంజుల వంజుల కే భీ వృక్ష హోతే హై. వృతం యానీ ఉస్సే పూరా గిరా హువా హై యే జో సరోవర్ హై, వాపిస్ సే వో బతా రహే హై. ఆగే కహతే హై ఔర్ భీ జో తట్ పర్ వృక్ష హై ఉన్కే విషయ మే కహతే హై. కుందయ కుర్భ కాశోకయ శిరీషయ కూట జంగుదయ కుబ్జకయ స్వర్ణయూథీ నాగపున్నాగ జాతిభి. కుందయ కుర్భ కాశోకయ శిరీషయ కూట జయకుందయ కుబ్జకయ స్వర్ణయూథీ నాగపున్నాగ జాతి భీ. కుందయ అర్థాత్ కుందో సే, కురుబక అర్థాత్ కురుబక, ఔర్ అశోక్ అశోక్ వృక్ష సే, శిరీభీ శిరీభీ సారీ శిరీషి సే, కూటజ కూటజ సే, ఔర్ ఇంగుదయ ఇంగుద్ సే, కుబ్జక యానీ కుబ్జ సే, స్వర్ణయూతి భీ అర్థాత్ బహుత్ హీ గోల్డన్ కలర్ కే వృక్ష హై, నాగ పున్నాగ ఔర్ జాతి భీ అలగ్ అలగ్ నాగ కీ బహుత్ బడే బడే నాగో కీ జాతియాం భీ వహాన్ పర్ హై. ఔర్ ఉసీ బాత్ కో ఆగే బతాతే హై. మల్లికా శతపత్రశ్చ మాధవీ జాలకాది భీ शोभितं धीरजस्यान्यै नित्यऋतुभिरलं द्रुमै मल्लिकाशतपत्रैश्च माधवीजालकादिभिः शोभितं धीरजस्यान्यै नित्यऋतुभिरलं द्रुमै। मतलब ये सब विविध प्रकार की लताओं के विषय में बता रहे हैं कि ये सब वहां पर है, मल्लिका, शतपत्र और माधवी और जलक आदि भी, जलक आदि से सुशोभित है। यानी ये बताना, ये बता रहे हैं कि ये सब विविध प्रकार की लताएं हैं, तट पर स्थित है और उसके कारण ये तट बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। शोभितम धीरजस्यान्य, शोभितम है, बहुत ज्यादा सुशोभित लगता है और अलंकृत लगता है, जो क्योंकि धीरजस, तीर मतलब होता है किनारा, किनारे पर ये सब उगे हुए हैं। और च अन्य, इसके अतिरिक्त क्या है, नित्य ऋतु भी, समस्त ऋतुओं में सब प्रकार के, नित्य ऋतु भिरलम द्रोमय, प्रचुर मात्रा में वृक्षों से फल, द्रोमय मतलब वृक्ष इतने भरे हुए होते हैं, हर ऋतु में फल फूल इत्यादि वहां पर लगे हुए होते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। अनुवाद, उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद, कहलार, उत्पल एवं शतपत्र फूलों से भरा हुआ था, जिनसे पर्वत की सुंदरता में वृद्धि हो रही थी। उस उद्यान में बिल्लव, कपिथा, जंबीरा तथा बल्लातक वृक्ष भी थे। मदमत भौरे मधुपान कर रहे थे और अत्यंत मधुर ध्वनि में गान करने वाले पक्षियों की चहचहाट के साथ वे भी गुनगुना रहे थे। सरोवर में हंसों, कारंडवों, चक्रवाकों, सारसों और जल मुर्गियों, दात्यूहों, कोष्टियों तथा अन्य चहचहाते पक्षियों के झुंड थे। मछलियों तथा कछुओं के इधर उधर तेजी से गति करने से कमल के फूलों से जो परागकरण गिरे थे तो उनसे जल सुशोभित था। सरोवर के चारों ओर कदम्ब, वेतस, नल, नीप, वंजुलक, कुंद और करुबक, अशोक, शिरीष, कूटज, इंगुद, कब्जक, स्वर्ण युथी, नाग, पुनाग जाति, मल्लिका, शतपत्र, जालका तथा माधवी लताएं थी। सरोवर के तट ऐसे वृक्षों से बली पांति अलंकृत थे जो सभी ऋतुओं में फल तथा फूल देने वाले थे। इस तरह पूरा पर्वत दिव्य रूप से सजा हुआ था। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, त्रिकूट पर्वत की नदियों तथा सरोवरों के ऐसे विशद वर्णन से यह निर्णय निकलता है कि पृथ्वी पर ऐसे अति सौंदर्य की कोई तुलना नहीं हो सकती, किंतु अन्य लोकों में ऐसे अनेक आश्चर्य हैं। उदाहरणार्थ, हमें ज्ञात होता है कि वहाँ 20 लाख किस्म के वृक्ष हैं, किंतु ये सभी पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत ब्रह्मांड की सारी बातों का पूरा पूरा ज्ञान प्रदान करता है। इसमें ना केवल इस ब्रह्मांड का वर्णन मिलता है अपितु इसके परे आध्यात्मिक जगत का भी वर्णन दिया गया है। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में वर्णित भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के इन वर्णों को चुनौती नहीं दे सकता। पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने का प्रयास असफल हो चुके हैं, किंतु पृथ्वी के लोग यह समझ सकते हैं कि अन्य लोकों में क्या क्या विद्यमान है। इसके लिए किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम से वास्तविक ज्ञान ग्रहण करके संतुष्ट हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अन्य लोकों के विषय में केवल कल्पना से हम कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन श्रीमद् भागवतम प्रमाणामलम, ये श्रीमद् भागवतम जो है उसके अंदर कुछ भी मल नहीं है, एकदम परफेक्ट शास्त्र है जिसके द्वारा हम सभी लोगों सभी ग्रहों के विषय में जान सकते हैं। तो फिर हमें खामखा में अनुमान प्रमाण से गलत अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हम अलग दूसरे दूसरे लोगों के विषय में, यहाँ तक कि भगवान के लोग के विषय में भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें श्रीमद् भागवतम के द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी ने साइट का वर्णन किया। अब उस प्रसिद्ध घटना का वर्णन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा। सुखदेव गोस्वामी को गजेंद्र लीला का वर्णन करना है, तो पर्वत का वर्णन और उद्यान का, वृक्षों का, पंछियों का आदि का वर्णन करते करते सरोवर का वर्णन किया। अब गजेंद्र का वर्णन कर रहे हैं कि वो गजेंद्र आखिर कौन थे जिसके लिए भगवान को इस पृथ्वी पर, इस लोक में आना पड़ा त्रिकूट पर्वत पर। तो उसके विषय में कहते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्रैकदा तत् गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वा रणयूथपश्चरन् सकंटकं कीचकवेणुवेत्रवत् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन् तत्रैकदा तत् गरिकाननाश्रय करेणुभिर्वा रणयूथपश्चरन् सकंटकं कीचकवेणुवेत्रवत् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन्। वे कहते तत् एकदा, एकदा मतलब एक बार, वहां पर, तत्र मतलब उस सरोवर में जो इतना सुंदर मैंने अभी बताया, उसमें तत् गिरी, उस पर्वत, वो जो त्रिकूट पर्वत की जो गिरी है, कंदरा है, गुफा, उसमें कानन आश्रया, जंगल में रहने वाला केणु भी, जंगल में रहने वाला हाथी, केणु भी मतलब हाथी, हथनियों के साथ, यानी कि वो पहले बता रहे हैं कि वो एक हाथी है, गजेंद्र का वर्णन कर रहे हैं कि वो उसी पर्वत पर वन में कंदरा में रहता है और केणु भी हाथियों हथनियों के साथ रहता है, बहुत सारी हथनियां हैं उसके साथ, और वो खुद क्या है, व्यूथपा मतलब वो हाथियों के झुंड का नाइक है, मतलब वो हाथियों का सरदार है। और क्या कर रहा है, चरण विचरण करते हुए सरोवर, मतलब ऐसे जा रहा था तो विचरण करते हुए सरोवर की ओर आया। और सकंटकम, अब उसके नेचर के विषय में बता रहे हैं कि वो घूमता है, तो जहां पर भी घूमता रहता था तो क्या करता था, सकंटकम कीचक वेणु वेत्रवद, वो वन में कहीं भी प्रवेश करता है तो बड़े बड़े जो भी वृक्ष हैं उनकी शाखाओं को तोड़ रहा है और तोड़ता है, और विशाल विशाल वर्गम, जो बड़े बड़े जंगल के अंदर जो बड़े बड़े पौधे हैं, प्ररोजन यानी उनको तोड़ते हुए, वनपति वृक्षों और पौधों को तोड़ते, मतलब ये उसका स्वभाव बता रहे हैं कि वो कैसा है। अनुवाद देखिए, एक बार हाथियों का उगवा यानी प्रमुख जो सरदार जो त्रिकूट पर्वत के जंगल में रह रहा था, अपनी हथिनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकल पड़ा। उसने अनेक पौधों लताओं तथा गुल्मों को उनके चुभने वाले कांटों की परवाह ना करते हुए रौंद डाला। उसका स्वभाव है, हाथी का ये स्वभाव होता है कि वो जिधर से गुजरता है ना, अगर वन होता है ना, तो वन में जो भी पेड़ पौधे होते ना, उनको सबको तोड़ता हुआ, उनको खींचता हुआ, खत्म करता हुआ आता है। इसलिए हाथी जो होता है ना, वो वन के वृक्षों को तोड़ता है, इतने बड़े बड़े होते हैं उसको भी तोड़ देता है। और जो निंदा होती है ना, जब हम निंदा करते हैं किसी की भी निंदा करते हैं, तो उसको हाथी के समान कहा जाता है। और हाथी कैसा पागल हाथी। अब ये नॉर्मल हाथी होता है, उसका भी स्वभाव क्या होता है कि वो जब वन से गुजरता है तो उसको तोड़ तोड़ के निकलता है सारे वृक्षों को, और अगर वो हाथी पागल हो जाए तो सोचो वो क्या करेगा। तो ये निंदा जो है वो एक पागल हाथी का स्वरूप है। जो हम भक्ति करते हैं, जो भक्ति अर्जित करते हैं, जैसे ही हम निंदा करते हैं वो पागल हाथी की तरह हमारी भक्ति की जो लता में से छोटा सा भी कोंपल निकला हुआ होता है उसको तोड़ कर बिखेर कर चला जाता है। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करें, भले जो भी कर रहे हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें ये देखना है कि हम अपनी भक्ति को किस तरह से कर रहे हैं। जो जैसे भी करें हमें अपनी भक्ति पर देखना चाहिए, क्या हमें मेरी साधना अच्छी जा रही है, मैं मंगला आरती पर कितने दिन मिस करता हूँ, मेरी माला कितनी रात तक देर तक खत्म होती है, मैं अपने भगवान की सेवा कितनी अच्छी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरे भले जैसे भी करें, अगर फिर भी हमें दिख रहा है उनकी कोई बुराई तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप सब पे कृपा करते हो, मुझ पर भी करो, उस पर भी करो। बल्कि हम अगर किसी की बुराई करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर भी बुराई आएगी, लेकिन किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान भी हमें देखेंगे कि देखो कितना सिंसियर है, दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर रहा है, तो हमारे अंदर भी भगवान और भी अच्छे अच्छे गुण डालेंगे। तो यहाँ पर ये हाथी का स्वभाव बता रहे हैं कि उसका स्वभाव ही ऐसा था कि जिधर से गुजरता था वो सारे लताओं को वृक्षों को तोड़ता हुआ आगे जाता था, ये उसके लिए खिलवाड़ था। आगे उस गजेंद्र का एक बहुत ही सुंदर गुण उसका वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ही वो जंगल में आता था तो क्या होता था, वे कहते हैं यत कंध मात्रा हरयो गजेंद्र व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखंडा महोरगाश्चापि भयात्रवंती सगौर कृष्ण सरभाश्चमर्य यत्कंध मात्रा धरयो गजेंद्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखंडा महोरगाश्चापि भया द्रवंती सगौर कृष्ण सरभाषमर्य। सगंध मात्रा, मतलब जब भी उस गंध कहते हैं खुशबू को या बू को, जैसे पता चलता था कि यहाँ पर गजेंद्र आ रहा है, मतलब उसकी खुशबू को इसका वर्णन कर रहे हैं, उसके गंध मात्र से क्या होता था, हरयो गजेंद्र, हरय कहते सिंह को, शेर को, शेर को जैसे पता चलता था कि यहाँ पर गजेंद्र आने वाला है तो वो भाग जाता था वहां से। अब देखो शेर जो होता है वो बहुत ज्यादा हिंसक पक्षी होता है, उसको देखकर सारे छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं। हाथी भी स्वभाव से शेर से डरते हैं और जब शेर दहाड़ता है तो वो भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गजेंद्र की बात है, ये कोई साधारण हाथी नहीं था, ये गजेंद्र था। तो ये जिस जगह से जाता था उसकी सगंध मात्रा, गंध मात्रा मतलब खुशबू से, जैसे ऐसे हम लोग बोलते हैं, जैसे उसका पता चलता था, जैसे खबर पड़ गई कि वो आ रहा है, तो सिंह भी, सिंह ना केवल सिंह, व्याघ्र, व्याघ्र कहते हैं बाघ को, जो बाघ होता है ना, और बाघ आदि, और व्याल मृगा, मृग कहते हैं बहुत ही, वो भी व्याल होता है, बहुत ही हिंसक पशु होता है, और सखंडा यानी गेंडे, महा उर्गा बड़े बड़े सर्प, उर्ग कहते हैं सर्प को, च अपि, अपि मतलब निस्संदेह, भयात डर से डर जाते थे, उनको बहुत ज्यादा डर लगता था कि हाथी आ रहा है तो अभी हम हमारी जान खतरे में है, तो क्या करते थे, भया द्रवंती, द्रवंती मतलब भाग जाते थे, बहुत डरते थे। और सगौर कृष्णा सरभाषमर, सगौर कृष्णा, उनमें से कुछ श्वेत और कुछ काले। अब कोई वो जो आते थे यहाँ पर, जो पक्षी परिंदे जो भी हिंसक पक्षी होते थे, कुछ काले होते थे, कुछ गोरे होते थे, भालू इत्यादि जो भी होते थे भाग जाते थे। सरभा, सरभ से चमरिया यानी तथा चमरी, वो
उनके देखने में मतलब उनका स्किन कैसा होता था। अनुवाद देखिए, उस हाथी की सुगंध पाकर ही सारे अन्य हाथी, बाघ तथा अन्य हिंस्तर पशु जैसे सिंह, गेंडे, सर्प एवं सफेद काले सर्प भय से भाग जाते। यहाँ तक कि चमरी हिरन भी भाग निकलते थे। सब लोग भागते थे, बस खाली हाथी आ गया, भागो भागो, हम लोगों को ये कुचल के मार डालेगा, तो इससे बेहतर है भाग जाओ। चलो, ये सब बड़े बड़े जो हिंसक पक्षी होते थे ना, वो तो हिंसक पशु वो सब भागते थे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जो छोटे छोटे पशु होते थे ना, वो नहीं भागते थे, बल्कि वो तो गजेंद्र ने उनको इतना अनुग्रह किया था कि उनको निर्भय कर दिया था। कैसे निर्भय कर दिया था वो बताते हैं शुकदेव गोस्वामी श्लोक नंबर 22 में। बहुत ही सुंदर कहते हैं, वृकावराह महिषर्क्ष शल्या गोपुच्छ शाला वृकमर्कटाश अन्यत्र क्षुत्रा हरिणाशादया चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण वृकावराह महिषक्षशल्या गोपुच्छाला वृकमर्कटाश अन्यत्र क्षुत्रा हरिणाशादया चरन्त्यभीत्या यदनुग्रहेण। यद अनुग्रहेण अर्थात उसके अनुग्रह से, यद गजेंद्र के अनुग्रह से, चरन्त्यभीता वो बगैर किसी भय के घूमते रहते थे। क्यों घूमते थे बगैर भय से? क्योंकि देखो, गजेंद्र के भय से बड़े बड़े हिंसक पक्षी तो सारे भाग जाते थे, अब ये छोटे छोटे पशु जो होते थे कौन कौन से, वृका अर्थात लोमड़ी, वराह वो सुअर को भी बोलते हैं और भालू को भी बोलते हैं, और महिषी यानी जो भैंसा, इक्ष यानी रीछ और ये सब शैला, गोपुच्छ ये हिरण की किस्म होती है उसको बोलते हैं, शाला शाला वृक्क ये उसको भेड़िए को बोलते हैं, और मार्केट किसको बोलते हैं, वानर को बोलते हैं, च अन्यत्र और भी बहुत सारे क्षुद्र छोटे पशु जैसे हिरण्या हिरने, और उसमें सबसे विशेष क्या है, शशादय यानी खरगोश इत्यादि जो छोटे छोटे पशु होते थे, चरंत्य भीता चरंत्य इधर उधर घूमते रहते थे अभीता, उनको कोई भय नहीं होता था क्योंकि अब उनको खाने वाला और कोई नहीं होता था, हाथी उनको नहीं खाता था, हाथी उनकी उनको सुरक्षा या अनुग्रहण उनको सुरक्षा प्रदान करता था। अनुवाद, इस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िया, भैंसे, भालू, सुअर, गोपुच्छ, सेही, बंदर और खरहे, हिरन तथा अन्य छोटे पशु जंगल में सर्वत्र विचरण करते रहते थे, वे उससे भयभीत नहीं रहते थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लगभग सभी पशु उसी हाथी से नियंत्रित थे, फिर भी यद्यपि वे भय रहित होकर विचरण कर सकते थे, किंतु सम्मान के कारण वे उसके समक्ष खड़े नहीं रहते थे। मतलब वो आते उनके सामने नहीं थे, लेकिन फिर भी क्योंकि दूसरे पक्षी पर अभी उसको खाने वाले नहीं थे, हाथी ने उनके ऊपर अनुग्रह किया था, तो वो निर्भय होकर चरते रहते थे, वो आनंद से घूमते थे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इस लीला में और क्या क्या हमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।